ईरा जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
ईरा जी, आपका जो करियर प्रोफाइल है बहुत ही अजीबोगरीब तो नहीं कहूँगा पर रंगीन है। MBA की बैकग्राउंड से, वो भी फर्स्ट क्लास MBA वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद फुल टाइम नॉवेलिस्ट और योगा टीचर, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्या मोटिवेशन थी इस ट्रांजिशन के पीछे?
पता है, मैंने इतना सोचा नहीं था इसके बारे में। जैसे मैं जब अमेरिका गई पढ़ाई के लिए, वहाँ मैंने कॉलेज किया, फिर मैं तुरंत मैंने वहाँ से MBA किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। इस टाइम में मेरी जो पहली किताब थी, व्हाट वुड यू डू टू सेव द वर्ल्ड, ये किताब है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस इन द मिस इंडिया पेजेंट। ये किताब निकल चुकी थी और बड़ी पॉपुलर हो चुकी थी इंडिया में। तो फिर इस टाइम तक मेरा एडमिशन हो गया था MBA में। आपको तो मालूम ही है इंडियन पेरेंट्स के होते कैसे हैं। उन्हें सब बोला कि अरे MBA तो करना ही चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो उन्हें सब बोला कि देखो, राइटिंग तो ठीक है पर ये कोई ऐसा करियर नहीं है, तो फिर ये हॉबी के लिए करो। तो फिर मैंने MBA किया, पर व्हाइल आई वाज डूइंग माय MBA मुझको सच में लगा कि ये इतना फुलफिलिंग नहीं है, और जो मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ ये बिजनेस नॉलेज से, व्हाइल दिस इज गुड, इट मे नॉट बी एज इम्पैक्टफुल एज व्हाट आई कुड बी डूइंग विद माय राइटिंग। क्योंकि इस टाइम में जो 2 साल MBA डिग्री की मैंने, मेरी बुक यू नो और ज्यादा बढ़ती गई इंडिया में, और ज्यादा पॉपुलर होती गई। तो फिर MBA कंप्लीट करने के बाद मैं वापस तुरंत इंडिया वापस नहीं गई राइटिंग के लिए, पर आई डिड एक्सप्लोर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अ लिटिल बिट। इन फैक्ट आई रोट अ बुक अबाउट इट। माय थर्ड नॉवल इज देयर इज नो लव ऑन वॉल स्ट्रीट, इज इंस्पायर्ड बाय माय टाइम इन कॉर्पोरेट अमेरिका। और फिर एक बड़ा एडहॉक डिसीजन था। एक दिन मैं बाली में थी, मैं वहाँ एक हॉलीडे के लिए गई थी, और एक्चुअली हॉलीडे नहीं, मेरी किताब सेकंड नॉवल पब्लिशर ने ऑलरेडी साइन कर ली थी, एंड आई टू फिनिश दैट नॉवल। पर फिर एक हफ्ते बाली के लिए जाओ, अपनी अपनी जॉब से एक हफ्ते लो और लिखो। और वहाँ लिखते लिखते मुझको लगा कि हम ये तो जरूर इसमें एक स्कोप है, और ठीक है इसमें पैसे इतने अभी कोई नहीं है, पर हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है। और जो मैं इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट पॉजिटिव कर सकती हूँ इन कहानियों के साथ, स्पेशली इंडियन यूथ पे, ये बहुत बहुत गुना ज्यादा है जितना वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, जितना उसमें होता जो कॉर्पोरेट जॉब्स में होता। तो फिर मैं इंडिया वापस चली गई, और फिर मेरी सेकंड बुक आई, थर्ड बुक आई, और ऐसे करियर बढ़ता रहा। अब योगा का क्वेश्चन आपने भी पूछा था, योग जो है वो बड़ा एक बड़ी एक 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 बैलेंसिंग चीज है। यू नो योगा ब्रिंग्स अबाउट यूनियन, उसका मतलब ही योग का यूनियन होता है, और बैलेंस भी। और एक राइटर की जो लाइफ होती है वो एक बड़ी किस्म की होती है, बड़ी पर्टिकुलर किस्म की होती है, वो अजीब किस्म से की होती है। वो दिन भर अकेले बैठे रहते हैं, अपने मन में कहानियां बनाते रहते हैं, उनको लिखते रहते हैं। तो मुझको लगा कि यू नो जो योग है मेरी लाइफ में काफी बैलेंस लाता था ऑन अ फिजिकल लेवल, बिकॉज हम लोग कंप्यूटर पे कभी कभी 10-12 घंटे बैठते हैं, और नेक शोल्डर में तो बहुत, और आई गॉट इनटू योग बिकॉज ऑफ माय नेक प्रॉब्लम्स। एंड देन ऑन अ फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोल लेवल, मुझको बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आए, व्हिच रियली हेल्प्ड माय राइटिंग। It increased my concentration, it increased my positivity, it increased my ability to think in a creative way. And this is when I decided to become a teacher and to actually teach this and to bring yoga into my life. And now I have a foundation that teaches underprivileged children in yoga. I said ki ab yoga ke sath I must give back also to society.
Acha, ek sawal main puchna chahunga ki aapki jo writing hai,
haan ji,
wo baki Indian English writers thodi hatke hai. कि वो आज के परिदृश्य में इंडिया में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और मैरिज के वो सवाल उठा रही है, जैसा कि स्पेशली आपकी नॉवेल इंडिया इन लव, इस बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आपने सोचा, कि क्या ये आपका वेस्टर्न लाइफस्टाइल था जो, या इंडिया में जो लाइफ का डिफरेंसेस देखा था उसको लेके था?
आई थिंक अमित जी आप बिल्कुल सही है। क्या हुआ कि मैं वेस्ट में रह रही थी, और मैं जब इंडिया वापस आती थी तो मेरा एक नया लेंस लगता था। मैंने बोला कि अरे ये तो इंडिया वो है, इंडिया नहीं है जो मैं छोड़ के गई थी, ये इंडिया तो बड़ा अलग है। यहाँ पे जो मेरे दोस्त लोग हैं, ये लोग अरेंज मैरिज के मार्केट में है, पर इनके बॉयफ्रेंड्स भी है, साथ साथ दोनों चीजें हो रही हैं साइड बाय साइड। तो मुझको लगा कि, और ये सब जो दोस्त लोग थे मेरे, ये भी बाहर पढ़ के आए थे, फिर वापस इंडिया आए, बड़े एजुकेटेड थे, उनकी सब जॉब्स थी, सब वर्किंग थी। ये नहीं थी कि हमारे कि बस घर पे बैठे हुए थे, यू नो दे वर ऑल वर्किंग वुमेन, इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल। तो मुझको लगा कि ये सब चेंजेस बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है सोसाइटी में, और इंडिया में जो दिल्ली की नाइट लाइफ थी वो न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ की मुकाबला करती थी, आप ये सोचिए, जो बॉम्बे की नाइट लाइफ की थी वो लंदन और पेरिस की नाइट लाइफ को मीनिंग बीट कर देती थी. तो मुझको लगा कि इंडिया तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा होगा. दिस वॉज वॉट फॉर्म माई एम्फेसिस फॉर इंडियन लव. शायद अगर मैं इंडिया में ही रह रही होती इतने सालों के लिए, मैंने वो चेंजेस इतने मुझको हिट नहीं करते, मुझको इतना महसूस नहीं होती ये चेंजेस, बिकॉज मैं उन चेंजेस के साथ ही साथ चलती जा रही थी. पर क्योंकि मैं चली गई थी बाहर और वापस आई, तो मुझको आई कुड सी द डिफरेंस, आई कुड सी द स्टार्क डिफरेंस इन द चेंज दैट हैड हैपेंड ओवर द इयर्स दैट आई हैड लेफ्ट.
अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हर लेखक के ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, आपकी राइटिंग पे क्या इन्फ्लुएंसेस हैं?
मेरी ग्रैंडमदर की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. मेरी जो दादी थी वो लिखती थी, उनका नाम था क्रांति त्रिवेदी, वो हिंदी में लिखती थी, उन्होंने कभी करीब 50 किताबें लिखी होंगी. उनकी राइटिंग्स, और वो भी मैं उनकी राइटिंग्स इतना पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि उनकी जो हिंदी थी वो बड़ी क्लिष्ट हिंदी थी, बड़ी पुरानी जमाने वाली हिंदी थी. पर जो वो लोग मुझको बताते हैं, जो उनकी समरीज पढ़ती हूँ, वो भी सिमिलर इश्यूज पे लिखती हैं. वो लिखती हैं वुमेन्स इश्यूज पे, वो लिखती हैं मिडिल क्लास, उस टाइम की मिडिल क्लास जो इंडिया थी उनके इश्यूज पे, वो लव रिलेशनशिप्स मैरिज पे बहुत लिखती थी. तो मुझको लगता है कि वो सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस तो आया ही था, पर एक तो वो थी. पर मेरे सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस इवन फॉर माय नॉवेल्स एंड फॉर माय नॉन फिक्शन, इंडिया लव द वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, आर पीपल स्टोरीज. यू नो, इट्स द स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच रियली इंस्पायर मी. यू नो, द स्टोरीज दैट आई हियर, दैट आई एक्सपीरियंस विद देम, दैट आई फील, दैट आई लिव विद देम, विद माय कैरेक्टर्स. फॉर इंडिया लव आई इंटरव्यूड almost 400 people and I traveled to, you know, 15 cities in India to write this book. So the kind of experience and exposure that I had was what formed the emphasis of this book.
अच्छा, आजकल आप सिडनी राइटर्स फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आई हुई हैं और वहाँ पर एक किताब वॉकिंग टूवर्ड्स आवरसेल्स, इंडियन वुमेन टेल देयर स्टोरीज रिलीज की जाएगी या हो चुकी होगी अब तक. तो ये जेंडर रेवोल्यूशन के बारे में बात करती है इंडिया के, तो इस बारे में कुछ बताएंगी सिडनी राइटर्स फेस्टिवल के?
हाँ जी, राइटर्स फेस्टिवल तो मुझको लगता है ये दुनिया का सबसे बढ़िया राइटर्स फेस्टिवल है और मैं अर्ज करती हूँ सब लिसनर्स को जाना चाहिए. बहुत सारे इवेंट्स फ्री हैं, थोड़े से पेड फॉर हैं, बट इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना सुंदर, इतनी अच्छे राइटर्स जो सब पूरे दुनिया से आए हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा राइटर्स फेस्टिवल. मैं दुनिया जाती रहती हूँ इन फेस्टिवल्स के लिए, तो ये प्लीज आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें. इंडियन वुमेन वॉकिंग टुवर्ड्स अरसेल्व्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क. इसमें 12 वॉइसेज हैं ऑफ इंडियन वुमेन फ्रॉम अक्रॉस एजेस, अक्रॉस रीजनल एंड लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश ऑल्सो, अक्रॉस बैकग्राउंड. ये नहीं है कि सब अपर क्लास वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश ही है, इसमें काफी सारी यू नो लेडीज हैं जो बिल्कुल छोटे शहरों से आ रही हैं, जो अपने खुद के भाषा में लिख रही हैं. तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब है और इसमें बस यही थीम है कि कितना चेंज हो रहा है अपने सोसाइटी में. यही एक इसको ये कनेक्टिंग स्ट्रैंड है इस सब कहानियां में, टोल्ड इन सच डिफरेंट इंटरेस्टिंग वेज. दिस इज द बुक दैट आई हैव टू पीसेस इन दिस बुक.
तो आगे कौन सी किताब आने वाली है आपकी?
एक्चुअली मेरी जो नेक्स्ट बुक है वो इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को रिलीज हो रही है. उसका नाम है माय बुक ऑफ योगा. इट्स अ योगा बुक एक्चुअली. आई हैव क्रिएटेड अ कैरेक्टर कॉल्ड ओम द योगा डॉग. इट्स अ स्मॉल डॉग हु डज योगा. तो ये इट्स अ बुक दैट ही इज टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू डू योगा.
इरा जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.